हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वेदांत तेज कदमों से चलते हुए नीचे आया तो हॉल में रितेश, जिग्नेश, राधिका, माधवी और निवेदिता पांचों काफी सीरियस होकर आपस में बातें कर रहे थे। वेदांत उनके बीच जाकर निवेदिता के पास बैठते हुए बोला, सब कुछ ठीक है ना? आप लोग इतने सीरियस होकर क्यों बैठे हो? जिग्नेश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो बेटा, मुझे पता है तुमने अपना बिजनेस खुद से रन किया है, तुमने हमारी कभी हेल्प नहीं ली है, पर हमें अब अनंत के बारे में सोचना है और उसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। जैसा कि तुम्हें पता है, हम लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं जिसमें अनंत को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वो एक आर्किटेक्चर है और उसको उसी के लिए सेंटर खोलना है, तो बस इन्वेस्टर्स अगर तुम अपनी तरफ से दे देते उसे तो हमारे लिए काम आसान हो जाता। और मुझे पता है अनंत खुद से आकर तुमसे कभी हेल्प नहीं मांगेगा। वेदांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो मेरा भी भाई है, मुझे पता है कि उसका नेचर कैसा है, तो आप इसकी चिंता मत करिए, जल्दी उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। उसको अपने लिए जो भी सामान चाहिए होगा उसमें मैं पूरी हेल्प करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। निवेदिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था वेदांत को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग ही ज्यादा सोच रहे हैं। जरूरी नहीं हर बार उसी की मदद की जाए जिसने कभी हमारी मदद की हो। अगर बिना कहे वेदांत अनंत की हेल्प नहीं करेगा तो कैसा भाई? माधवी ने अपने मन ही मन में कहा, मैं इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती अनंत और वेदांत की करीबी बढ़े, मुझे कुछ करना होगा। वहीं जिग्नेश और रितेश काफी खुश हो चुके थे, उनके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उन्होंने जल्दी से वेदांत के पास आकर उसके कंधे थपथपाते हुए कहा, तुमने हमारी सारी चिंता दूर कर दी, चलो बहू से कहते हैं ब्रेकफास्ट लगा दे, आज उसके हाथ का बना खाना पहली बार खाएंगे। सब लोगों ने सहमति में हाँ में सर हिलाया और फिर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। तब तक अनाही भी वापस राविया के पास किचन में आ चुकी थी, पर उसने जब देखा कि किचन में राविया की जगह अनंत है तो उसने जल्दी से किचन के काउंटर के पास जाते हुए कहा, अरे भैया आप यहाँ, और वो राविया कहाँ गई? अभी घर वाले खाने के लिए बोलने वाले होंगे, आप जल्दी से रूम में जाकर उसे वापस भेजिए, अगर ताई जी को पता चला तो खाम खाम बात बढ़ाएंगी। अनंत ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच भाभी, आप कितनी अच्छी हैं, और एक वो नादान है, मन तो करता है। अनाही ने गुस्से से उसे आंखें दिखाकर बीच में ही रोकते हुए कहा, खबरदार जो उसके खिलाफ कुछ भी कहा, जिस इंसान को जो आता है उसकी कदर करनी चाहिए और जो नहीं आता है उसके लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी वो तो कितनी अच्छी है, उसे खाना नहीं बनाना था उसके बाद भी वो मेरे कहने पर कोशिश कर रही थी, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है, वो मेरी छोटी बहन जैसी है, तो मैं आपके मुंह से उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। अब जाइए, आप उसे भेजिए यहाँ, मैं ये सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगवाती हूँ। अनंत ने अनाही को खौफ भरी नजरों से देखा, क्योंकि जिस तरीके से अनाही ने उसे फटकार लगाई थी उसे पता चल चुका था अनाही बहुत डेंजरस है। वो बस फीकी सी हंसी हंसते हुए वहाँ से बाहर चला गया। उसके जाते ही अनाही को भी हंसी आ गई। अनंत ने किचन से निकलते ही अपने सीने पर हाथ रखते हुए एक गहरी सांस छोड़कर कहा, भाभी तो बहुत डेंजरस है, मुझे उनसे बच के रहना पड़ेगा। अनंत फिर तेज कदमों से अपने कमरे में गया, जहाँ राविया अपने फोन में कुछ कर रही थी। उसका फोन टूटा हुआ लग रहा था, इसके बावजूद वो उसे गौर से देखते हुए उसमें किसी के नंबर डायल कर रही थी। अनंत की नज़र राविया से हट नहीं रही थी, उसने येलो कलर की साड़ी पहनी थी और उसमें उसका वो गोरा रंग और भी निखर के बाहर आ रहा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और फिलहाल उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उनमें वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अनंत उसके पास गया और उसके हाथ से वो फोन छीनते हुए बोला, लाओ मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा या फिर तुम्हें नया फोन ला दूंगा, फिलहाल के लिए ब्रेकफास्ट करने चलो। राविया ने आंखें उठाकर अनंत को देखा और फिर जल्दी से उसके हाथ से वो फोन वापस छीनते हुए बोली, नहीं प्लीज, मुझे अर्जेंटली जॉब के लिए अप्लाई करना है और जैसा मेरी सासू माँ बोल रही थी मुझे नहीं लगता वो मुझे अपनी कंपनी में जॉब करने देगी, इससे अच्छा है कि मैं कहीं और जॉब ढूंढ लेती हूँ। अनंत ने अपने होंठ भींचते हुए कुछ पल सोचा और फिर धीरे से कहा, मेरे साथ काम करोगी? फिलहाल के लिए मैं भी तुम्हारी तरह जॉबलेस हूँ। हाँ, लंदन जाकर मैंने कॉन्टैक्ट तो बहुत कमा लिए हैं, पर इनका यूज मैं इंडिया में कर पाऊंगा या नहीं पता नहीं है। मुझे एक आर्किटेक्चर ऑफिस खोलना है जिसमें लोग हमसे डील करने आए, और आई थिंक तुम्हें भी डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है। हमारा घर पता नहीं कब बसेगा, पर हम लोगों का घर खूबसूरत बना सकते हैं एक साथ मिलकर। राविया ने आंखें छोटी करते हुए कहा, आइडिया बुरा नहीं है, और मुझे डिजाइनिंग में सच में बहुत इंटरेस्ट है, अनंत ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। पर हाँ, मैं पहले दिन से तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगा। एक आध प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल रहे उसके बाद हम और एम्प्लॉयज हायर करेंगे, लेकिन सारी शुरुआत जीरो से ही होती है, तो अगर तुम्हें ये शर्त भी मंजूर है फिर बाकी जगह अप्लाई करना बंद कर दो। राविया ने कुछ सोचते हुए अपना फोन बंद करके टेबल पर रखते हुए कहा, ठीक है, तब तक के लिए मैं भी अपने नंबर बढ़ावा लेती हूँ। एक बहू के रूप में पता नहीं मेरी सास मेरे खाने को कितने नंबर देने वाली है। ऊपर से ये ना बोल दे कि ये सब मैंने सिर्फ अनाहिदी से बनवाया है, वरना मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और आई स्वेर वो सब मैंने खुद बनाया था। हाँ, बस वो दूध गायब नहीं हुआ था। अचानक ही राविया ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, आप बताओ ना, वो दूध गायब हुआ कि वो उस कढ़ाई में ही है? क्योंकि मैंने कभी गाजर का हलवा ऐसा नहीं खाया है जिसमें गाजर दूध में डूबी रहती हैं। अनंत को मन ही मन राविया की बातों पर हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करके सीरियस फेस के साथ कहा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। शायद मॉम तुम्हें बहुत डांटने वाली है कि तुमने सिर्फ एक डिश बनाई और वो भी अच्छी नहीं थी। अब जैसे भी बनी है खानी तो पड़ेगी। चलो नीचे। राविया भगवान को याद करते हुए धीमे कदमों से नीचे जाने लगी। अनंत भी उसके पीछे पीछे बालों में हाथ घुमाते हुए आ रहा था। उन दोनों को एक साथ आते देखकर माधवी ने अपने मन में कहा, अगर ये लड़की मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बुरी निकली तो क्या मैं इन दोनों का डाइवोर्स करवा सकती हूँ? अनाही ने राविया को अपने पास आने का इशारा किया, जिसके साथ ही राविया तेज कदमों से चलते हुए उसके पास आ गई। उसके बाद अनाही ने धीरे धीरे उसे गाइड करते हुए कहा कि सबको कैसे खाना परोसना है। उसके बाद राविया ने अनाही की हेल्प से सबको सबसे पहले गाजर का हलवा ही सर्व किया था, और वो हलवा बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। ये देखकर राविया ने गुस्से में मुंह फुलाकर अनंत को देखा, क्योंकि उसने खामखां उसे डरा दिया था। अनंत ने आई वेक करते हुए एक चम्मच हलवे का भरकर अपने मुंह में रखा, जिसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो गईं, क्योंकि हलवा सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बना था। सबसे पहले निवेदिता ने खुश होते हुए कहा, वाह बेटा, हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट बना, और तुम हमसे बोल रही थी कि तुम्हें खाना नहीं बनाना आता। झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। कैसे बनाया, मुझे भी सिखाना। राविया ने जल्दी से खुश होते हुए अनाही का हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी ये एक्साइटमेंट देखकर अनाही ने बस पलके झपकाते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया। विहा ने भी जल्दी से अपनी कटोरी का हलवा खत्म करते हुए राविया की तरफ उस कटोरी को बढ़ाते हुए कहा, दीदी मुझे और हलवा चाहिए, सच में बहुत अच्छा बना है। ये सुनकर राविया ने खुशी खुशी विहा को और हलवा सर्व किया।
अनाही ने एक गहरी सांस लेकर विहा के बगल में बैठते हुए धीरे से कहा, तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? मैंने तुमसे कहा था ना कि छुट्टी नहीं करनी है। विहा ने रोनी सूरत बनाकर अनाही को देखकर धीरे से कहा, दी अभी हमारे सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ जीजू के हुए हैं।